ओम शांति। एक बार हम सब मिल करके उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसे हम सब ने सुना है कि ब्रह्मा बाबा के साथ सभी ब्राह्मण वत्स मिल करके बोला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम ध्वनि करेंगे, फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उसको निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ये ओम शांति की ध्वनि ही है जो हम सबको गाइड भी करती है, समय समय पर चेतावनी भी देती है और हमारा जो लक्ष्य है और जो लक्षण है उन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस है, कोई दूरी है, उसको समाप्त करने के यत्न की ओर इशारा भी करती है। अभी जब बहन जी परिचय बता रहे थे तो मुझे ख्याल आया कि बहन जी ने सारा लौकिक परिचय तो बता दिया लेकिन जो परिचय को हम सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं और जो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम जब ज्ञान में आए तो हमें बाबा मामा का पालना का परम सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और साथ ही साथ जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को बाबा ने प्राप्त किया तो ड्रामा अनुसार उस समय हम बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे अपना इंजीनियरिंग करने के बाद, लेकिन बाबा ने समय पर जैसा बाबा ने कहा था वहाँ भेजते समय, तो समय पर बाबा ने बुला लिया और हमें ये एक अपने जीवन का सबसे बड़ा सुनहरा अवसर मिला कि बाबा की अंतिम दो दिन 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था फरिश्ता स्वरूप स्थिति हमें अपनी इन आँखों से देखने का सौभाग्य मिला। तो आज का विषय भी वैसा ही है, संगम का समय, ये खजाना है पूरा, लेकिन खजाने में भी श्रेणियाँ होती हैं। तो संगम में हम सब बाबा के बच्चे बने हैं, सबको खजाना ये प्राप्त है, अनेकों खजाने प्राप्त हैं जो बाबा ने बताए हैं, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, खुशी का, मन वाणी कर्म का, गुणों का, शक्तियों का, बहुत खजाने बाबा ने दिए हैं। लेकिन आज बाबा विशेष हम बच्चों को समय के खजाने की तरफ इशारा करता है कि किस तरह अगर एक खजाना सफल कर लिया, समय रूपी खजाना, तो सभी खजाने स्वतः ही सफल होते चले जाएंगे। तो आज की मुरली में भी बाबा ने इस बात की ओर इशारा किया कि ये जैसे लौकिक में हीरा बहुत कीमती चीज माना जाता है, तो हम बच्चों का जीवन भी हीरे तुल्य है, जो समझते हैं कि वास्तव में हम संगम पर हैं, बाबा को यथार्थ रीति से पहचाना है। और जो बच्चे नहीं समझते बाबा के बच्चे तो सारी दुनिया ही है, तो बहुत अज्ञानी आत्माएं हैं जो समझते नहीं हैं कि बाबा भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, तो वो जैसे कि बस बाबा ने बोला सच्चे हीरे नहीं है, आप सब बच्चे ही सच्चे हीरे हो। तो हमें भी अपने में भी कैसे पता चले, कैसे पता चले कि हम में से भी अगर सच्चे हीरे नहीं हैं तो कैसे सच्चे हीरे बने। नंबरवार तो सब हीरे हैं ही, हमने बाबा को पहचाना, बाबा ने हमें पहचाना, तो ये सच्चे हीरे की पहचान, हीरे की। तो इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आई कि एक राजा के दरबार में एक आदमी आया और व्यापारी था, तो दो हीरे थे उसके पास। तो उसने राजा को बोला कि ये दो हीरे हैं, इसमें एक बिल्कुल सच्चा हीरा है और एक नकली हीरा है, तो आप मुझे पहचान कर बताइए, या आपके दरबार में जो भी हो उनसे कहिए कि पहचाने की कौन सा असली हीरा है कौन सा नकली हीरा है। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे थे और शायद मौसम भी उस वक्त ऐसा ही रहा होगा, ठंडी का, धूप अच्छी लगती थी सबको, तो उस दिन राजा ने दरबार भी बाहर खुले में ही लगाया हुआ था, तो वहां उसने रख दिया। तो सब लोग आए, बहुत कोशिश करी कहीं थोड़ा सा भी पता चल जाए, लेकिन कोई भी बता नहीं सका। तो राजा ने सबको बुलाया और फिर राजा ने कहा अपने मंत्री को कि भई आप बताइए, और उसको देखा, उसने बताया देख करके कि मैं भी नहीं पहचान सका। तो फिर राजा ने उसी से ही पूछा कि आप बताइए कि कौन सा असली है कौन सा नकली। तो उसने खुद ही राजा को बुलाया और राजा को कहा कि आप दोनों को टच करिए। उसने राजा ने टच किया, छुआ, तो एक हीरा थोड़ा गरम जैसा हो गया था, धूप में था, और दूसरा उसी पहले जैसे टेम्परेचर पर था। तो उसने बताया जो असली हीरा होता है वो कभी भी गरम ठंडा और वो नहीं, और जो नकली होगा वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है उसका टेम्परेचर। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, बाबा ने हमें हीरा तो बना दिया, लेकिन हीरे में कोई विपरीत परिस्थिति आए और हम उसके अनुसार अपने पुराने संस्कारों के वश गर्म हो जाएं, क्रोध में आ जाएं, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी विकारों के वश हो जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी पूरे असली हीरा नहीं है, नकली हीरा ही है। तो हीरे तो बन गए, तो बाबा ने ये अब संगम का समय जो दिया है, इसमें ये समय दिया ही है हमें असली हीरा बनने के लिए, कि जितना जितना समय बीतता जाए हम असली हीरा बनते जाए। और खजाने तो बाबा ने बहुत दिए ही हैं, लेकिन आज जो समय की बात कर रहे हैं, तो समय बहुत कीमती खजाना है। बचपन से सुनते आए हैं, कि भाई समय बीता हुआ समय कभी लौटता नहीं है, और समय जो है बहुत मनुष्य को चाहे तख्ते पर चढ़ा दे चाहे तख्त दे दे, क्योंकि समय के अनुसार ही मनुष्य की बुद्धि मन बुद्धि चलती है, फिर वैसी फिर उसकी वाणी निकलती है और उसी अनुसार फिर उसका भविष्य निर्धारित होता है आदि आदि। समय की एक सबसे बड़ी बात यह है कि समय को इकट्ठा करके नहीं रख सकते। आजकल इकट्ठा करने की भी प्रवृत्ति होती है ना, वक्त पर काम आएगा ये चीज, धन दौलत कोई भी चीज होती है, लेकिन समय ऐसी चीज है उसे हमें खर्चना ही पड़ता है। किस रफ्तार से कैसे खर्चते हैं उसे, उसके खर्चने का भी एक कायदे अनुसार 60 मिनट प्रति घंटा या 60 सेकंड प्रति मिनट की रफ्तार से हमें उसे खर्चना ही है और समय के साथ साथ चलना है। जैसे समय के अनुसार बच्चे का ग्रोथ होता है, बाल्यावस्था होती है, फिर थोड़ा और युवान होता है, अधेड़ होता है, वृद्ध होता है आदि आदि। तो इसी प्रकार से इस संगम के समय में भी जब से हम ज्ञान मार्ग में आते हैं पैदा होते हैं तो हमारी भी यही अवस्थाएं चलती हैं। आप सब लोग अपनी अपनी उन अवस्थाओं को याद करिए जब शुरू में ज्ञान में आए होंगे, तो ज्ञान में आए तो बस बिल्कुल निस्संकल्प, शुरू में बड़ा नशा चढ़ जाता था, अपने में ही मस्त रहते हैं, खुशी रहती है। फिर धीरे 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 जब बच्चा और बड़ा होता जाता है, बड़ों के और व्यवहार में आता है तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होता है, खेल कूद होता है, तो आपस में हमारे ब्राह्मणों के बीच में भी कई बार कोई मतभेद हो जाता है, मनभेद हो जाता है, ये सब होते हैं। फिर और मैच्योर स्टेज आती है, उसके अनुसार फिर हम समझते हैं कि अरे ये सब में क्या है, हर एक का अपना पुरुषार्थ है, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पद पाएगा आदि आदि, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अपने अंदर देखते रहना, चेकिंग कैसे करते जाएं कि ये जो खजाना है वास्तव में हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है, ये खजाना हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और जब इस बात को हम पक्का समझ लेते हैं कि ये खजाना हमारा लीक नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो फिर खुशी भी बहुत बढ़ती जाती है। तो बाबा ने आज भी बताया ना कि अल्टीमेटली हमें पहुंचना तो है कहाँ तक, कर्मातीत अवस्था तक। आज भी वरदान में भी बाबा का ये था, कर्मातीत अवस्था के लक्षण भी होते हैं, न्यारा और प्यारा और हल्का महसूस करता जाएगा, वो कई लक्षण बाबा ने और इसमें बताए थे। तो ये इस समय के खजाने को कैसे हम डेली ऑडिट करते जाएं, देखते जाएं, और उसके रेफरेंस में अपना पुरुषार्थ भी हम देखते जाएं, तो हम सहज ही कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते रह सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा लक्ष्य क्या है, पहले तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। बाबा ने कहा लक्ष्य क्लियर होता है तो लक्षण भी उसी अनुसार बनते जाते हैं। तो लक्ष्य क्या है हम सब लोगों का इस जन्म का, वैसे तो लक्ष्मी नारायण बनना ही है, लेकिन और इस जन्म में क्या लक्ष्य है, वो तो देवताओं के लक्ष्य हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना ही है, लेकिन अभी तो बाबा ने यही बताया है कि फरिश्ता स्वरूप बनना है, अव्यक्ति स्थिति को प्राप्त करना है, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी जैसा बनना है। ये जितनी बाबा ने बातें बताई हैं ये सब इस समय की हैं। तो बनना तो हमें इसी शरीर में है, स्वर्ग में तो सतयुग में तो शरीर ही दूसरा मिलेगा, तत्व भी सतो प्रधान होंगे, सब अनुकूल होगा, लेकिन बनना तो यहाँ है ना, परफेक्ट बनना है। जिस स्थिति में हम परम धाम से आए थे एकदम पवित्र आत्मा है, अंत में वैसी स्थिति ही प्राप्त करके जानी है। इस संदर्भ में हम एक ममा की बात सुनाते हैं। आप सबको मालूम है ना ममा ने कब शरीर छोड़ा था, याद है तारीख या किस साल में छोड़ा था? ये तो मालूम होना चाहिए। 1965 में जून में, 25 जून था शायद, 24 जून है ना। हाँ, तो मामा ने जब शरीर छोड़ा तो हमने भी ये सुना है, हम यहाँ तो थे नहीं उस समय, लेकिन मामा ने जब शरीर छोड़ा तो मामा सूक्ष्म वतन में गई बाबा के पास, वहाँ जैसे शरीर छोड़ के सब जाते हैं, तो वहाँ, और तब तो साकार बाबा यहीं पर ही थे, नीचे थे, तो साकार बाबा ने के जो संपूर्ण स्वरूप वहाँ पर थे अव्यक्त बाबा, तो वहाँ पर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश करके पूछा मामा से, मामा आप संपूर्ण कर स्थिति का अनुभव करके आई, आपने कर्मातीत स्थिति की अनुभूति की? तो मामा चुप रहे। फिर जब बाबा ने पूछा फिर, तो मामा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया। तो बाबा ने कहा, बच्ची नहीं किया तो जाओ, अभी तो तुम्हारा, तुम अभी आई हो, अभी तो तुम्हारा शरीर वहाँ हिस्ट्री हॉल में, पांडव भवन में उधर रखा है, सब बच्चे योग कर रहे हैं, और वहाँ जाओ उस शरीर में प्रवेश करके और फिर कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ कुछ देर के लिए। लेकिन कर्मातीत स्थिति क्या होती है? तो बाबा ने मामा को नीचे भेजा, मामा नीचे आई, और फिर थोड़े समय के बाद जब मामा फिर ऊपर गए तो बाबा ने पूछा, बच्ची अनुभव किया? तो मामा ने कहा कि नहीं बाबा, अनुभव तो नहीं कर सके। क्यों नहीं किया बच्ची? कि बाबा जब मैं वहाँ गई तो शरीर तो ठंडा हो गया था जैसे, बिल्कुल उसमें कोई भी चुरपुर नहीं हुई, मूवमेंट नहीं हुई, तो मैंने प्रयास भी किया लेकिन अंदर तो मतलब ये अनुभव नहीं कर सकी, और फिर मुझे वापस आ गई मैं यहाँ आपके पास, कोई भी शरीर में हरकत नहीं हुई। तो बाबा ने कहा उस समय ही 65 में कि देखो बच्ची, हाँ अभी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए तुम्हें फिर जाके जन्म लेना है, और जन्म लेके जो भी पुरुषार्थ बाकी रह गया है वो पूरा पुरुषार्थ करना है, और वो पूरा पुरुषार्थ करते हुए संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है, बिल्कुल वैसी स्थिति जैसी कि परम धाम से आते वक्त आत्मा एकदम पवित्र होती है, उस स्थिति को तब परम धाम भी जा सकोगे और तब वहां के गेट खुलेंगे, बाकी अपवित्र आत्मा तो जा नहीं सकती। इसलिए बनना तो सबको पवित्र है, अपनी अपनी कर्मातीत, कर्मातीत अवस्था भी सबकी अपनी अपनी होती है, अलग अलग होती है, तो सबको अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है और तब परम धाम जा सकेंगे, जिस परम धाम से हम बच्चे जब आए थे। तो इसीलिए अभी वैसी स्थिति को प्राप्त करना है, इसीलिए जाके फिर मामा को भेजा। और हम सभी जानते हैं कि 1965 से अब तक देखो कितने 35 और 20 55 साल जैसे हो गए, और बाबा मतलब मम्मा बस भिन्न भिन्न दूसरे नाम रूप में शरीर में कैसे पुरुषार्थ कर रहे होंगे, और किस रीति से जब वो भी बस पवित्र बनने की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की कगार पर होंगे, हम सभी बच्चे भी, क्योंकि बाबा ने बताया है पवित्र बन के ही सबको जाना है। अब ये दूसरी बात है कुछ अपने पुरुषार्थ से पवित्र बन जाए, नहीं तो पवित्र बने बगैर तो परम धाम जा नहीं सकते। इसीलिए किसी को मार से, किसी को बाबा कहते हैं यहाँ पर ना, सजा से, हर रीति से पवित्र पहले बनना पड़े। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर मार भी खाई मानी मोचर, मोचरी जैसे बोलते हैं ना, रोटी का टुकड़ा भी मिला और सजा भी मिली, पद भी भ्रष्ट हुआ कम हुआ, तो उससे क्या फायदा। तो ये समय की ही बलिहारी है, ये समय ही बाबा ने हमें इसलिए दिया हुआ है, बाबा का हम बच्चों पे बहुत बहुत प्यार है। बाबा नहीं चाहता कि बच्चे सजा खाए और सजा खा के भी पद कम हो जाए बच्चों का, नहीं। इसीलिए बाबा ने ये समय दिया, इस समय को पहचान करके अब हमें अंत समय के अनुसार पुरुषार्थ करना पड़े। तो पहले तो ये देखना पड़े इस रीति से कि किस रीति से हमें अब जो भी बचा हुआ समय, जो हुआ बीता वो तो बीत गया, लेकिन जो भी बचा समय है वो जैसे ग्रेस पीरियड है, उस समय के अनुसार हमें अब अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को सामने रखते हुए ये पद पाना है और तब परम धाम जा सकेंगे। तो उसमें अपने को क्या क्या देखना है वो अब हम लोग आपस में मंथन करते चलें, बोलते चलें, आप लोग भी गौर से सुनते चलो कि मम्मा को भी जब इतना नंबर 1-2 आत्मा, हाँ, जब मम्मा को भी कोई कंसेशन नहीं हुआ तो हमें या आपको किसी को क्या कंसेशन होगा। केवल ब्रह्मा बाबा ही अब तक संपूर्ण बने हैं, जो सूक्ष्म वतन में हम सब बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए अब हमें ये देखना है कि हमें कैसी वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ मेन करना है। तो पहली बात है, अब मैं बाबा का रेफरेंस भी लेकर चलता जाऊंगा बीच बीच में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का हमें काफी मौका मिला है, और बाबा ने सदा कहा है अंतमति सोगति का। तो अंत में अगर हम संपूर्ण बनना चाहते हैं तो अंत से पहले ही हमें संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा संपूर्ण स्थिति को, कि ये देखना है कि मेरा अंत जो है बिल्कुल ऐसा हो, उस समय मेरी मति ऐसी हो, बुद्धि ऐसी हो कि मुझे कोई भी याद ना आए, व्यक्ति वस्तु वैभव कोई भी एक भी चीज, अगर कोई ऐसी चीज याद आती रही तो फिर वैसी गति हो जाएगी, वहां ही जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए पहली बात तो मुझे उस अंतिम समय का सदा ख्याल रखना है, जैसे कि ये मेरी अब अंतिम घड़ी ही है। तो कोई भी बात होती है तो उस बात को बाबा ने कहा कि एक तो दिल में नहीं, क्योंकि जब अब हमारा ये ही छोटा सा संसार है, बाहर की दुनिया से तो हम लोगों का नाता लगभग टूट सा ही गया, केवल सेवा के क्षेत्र में है या परिवार में जो ज्ञान में नहीं चलते हैं उनके साथ कुछ संबंध है, लेकिन ज्यादातर करके हमारा अपना परिवार जब इसको देखते हैं तो हमारे मन में कोई ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि देखो ये तो इतना पुराने, इनमें अभी भी ये चीज है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, ये है। तो किसी में भी किसी की भी नेगेटिविटी को हम न देखें, नकारात्मक अवगुण। वो खुद ही निकालने का पुरुषार्थ कर रहा है, इसलिए जब वो खुद निकालने का पुरुषार्थ कर रहा है उस बात को हम देखने, अब आंख तो है देखने में आता है लेकिन दिल में उसे रखें ये हमारे हाथ में है कि दिल में रखें या ना रखें। तो इसीलिए वो दिल में हमारे न रहे और उसके प्रति, व्यक्ति के प्रति कोई घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना कोई भी ऐसी न हो, तो वो तभी है जब हम उस बात को एकदम भूल जाए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, एक जीवन के अंदर लक्ष्य रखें कि किसी के भी कोई नेगेटिव चीज को हमें देखना नहीं है। कोई भी भाई हो बहन हो, किसी ने हमारे साथ जितना भी खराब बात किया हो, लेकिन हम जो है उसके प्रति हमारी सदा शुभ भावना रहे कि बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दो। बस दूसरी बात, जो भारतीय संस्कृति में भी कई सिद्धांत आते हैं, कौन सा कि एक तो है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारी कुटुंब है, परिवार है। तो वसुधैव वसुधा परिवार कब होगी पृथ्वी, जब सबके प्रति हमारी परिवार में प्रेम की भावना होती है, आदर की भावना होती है, स्नेह होता है। तो परिवार के अंदर वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा परिवार है, लेकिन हमने मनुष्यों तक ही सीमित रख लिया कि हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये है, तो वो तक सीमित न रहे हम। हमारा ये रहे कि हाँ ये परिवार है, तो केवल व्यक्ति ही नहीं, संसार में वसुधा में तो पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति के पांचों तत्व पेड़ पौधे सब आ जाते हैं। तो इसीलिए हरेक के प्रति हमारी पारिवारिक दृष्टि हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है, छोटा होता है ना, तो वो बस माँ की छाती से ही लगा रहता है, वहीं से उसे दूध प्राप्त होता है, पालना होती है, अब बस माँ ही उसका संसार है। ऐसे पेड़ पौधे जो हैं, ये भी जब से लगाया जाता है, इन्हें बीज बोया जाता है, तब से धरती माँ के साथ ही लगे रहते हैं, तो वहीं से ही उन्हें सब कुछ न्यूट्रिशन मिलता है, बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारे परिवार के सबसे छोटे मेंबर हैं, पेड़ पौधे जितने हैं, ये वृक्ष आदि, इनसे हमारा व्यवहार बिल्कुल सबसे छोटे सदस्य की तरह होना चाहिए। सबसे छोटा जो होता है वैसे भी सबका प्यारा होता है, बच्चे को छोटे को सब बुलाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो भी खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है। कहते हैं कितनी बार पूरे एक दिन में 300 से ज्यादा बार मुस्कुराता है, तो इतना हम अपने से पूछे, हम इतनी बार मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं? आजकल तो खुश होना भी एक बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि समस्याएं इतनी हो गई हैं खुश होने के लिए, इसीलिए लाफिंग क्लब वगैरह बनाए हैं। चलो वैसे ना सही, ऊपर से ही हंसो, लेकिन हंसने के लिए ऐसा करा हुआ है। यानी खुशी जो है हमारे जीवन से जैसे गायब जैसी हो गई। परिस्थितियां भी पिछले 1.5-2 साल से जो देख रहे हैं वो विशेष ऐसी परिस्थितियां हैं। तो इन पेड़ पौधों को हमें बहुत स्नेह से, पालना से ऐसे करना है। और साथ ही साथ दूसरा, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, पेट से रगड़ के चलना शुरू करता है, और बड़ा होता है, दो हाथ दो पैर से वो चलता है, और फिर जब पूरा ग्रोथ हो जाती है तब दो पांव से चलता है। बस इसी प्रकार से पेड़ पौधे यंगेस्ट मेंबर हैं, इसके बाद जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं, जो जमीन पे रेंगने वाले हैं या दो हाथ दो पैर से चलने वाले, ये सब हमारे सेकंड यंगेस्ट मेंबर, यानी कि उनसे बड़े और फिर सबसे बड़े हम मनुष्य, तो हम लोगों का कर्तव्य ये है वसुधा पर जितने भी हैं पेड़ ये जीव जंतु, इन सबको हम बहुत प्यार की दृष्टि से, जैसे अपना कोई बहुत प्यारा होता है, एक एक को हम इस दृष्टिकोण से देखें। हमने ब्रह्मा बाबा को भी देखा, बस ब्रह्मा बाबा हर एक के प्रति कैसी उनकी दृष्टि थी। जैसे गुरुवार को भोग लगता था और ऊपर हिस्ट्री हॉल में बाबा क्लास कराते थे, इधर से जैसे बाबा आते थे, ये बाबा का संदली, इधर मम्मा का संदली और बीच में खाली पड़ी रहती थी, तो बस बाबा मुरली चलाई, उसके बाद गुरुवार का दिन होता था, भोग रख दिया जाता था, संदेशी आती थी और बाबा बस थोड़ा दृष्टि दी, हाँ बच्ची गोसून कम सुन, जाओ और जल्दी आओ संदेश लेके, क्योंकि इसमें कोई कमाई तो होती नहीं है, बाबा ने कहा ये तो खेल पाल है। तो संदेशी जाती थी, संदेश लेके आती थी भोग का, और उसके बाद संदेश सुनाती थी, फिर बाबा भोग की डिब्बी जैसे खोली और हाथ में थोड़ा सा भोग रखा, अब बाबा कहते थे आओ बच्ची आओ 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 बच्ची, सब देखते थे बाबा किसको बुला रहा है बच्ची को, बस हाथ में तो कहीं से छोटी सी एक चिड़िया होती थी, बस फुदकती हुई आई दूर से, पहले मेज के पास आई, मेज के ऊपर चढ़ी, उसके बाद हाथ पर बैठती थी और बाबा के हाथ से वो खाती थी बस लेकर के। और कभी कभी बाबा हंसी मजाक करते थे, क्योंकि वहाँ दिवाली में ये दीवार पर एक घड़ी लगी रहती थी, अब वो घड़ी भी ऐसी थी कि जब घंटा पूरा होता था, यानी जब 7 बजे 8 बजे 9 बजे, तो उसमें नीचे से एक खुलता था दरवाजा सा और एक चिड़िया बाहर निकलती थी मैकेनिकल, और वो कू 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 ऐसे करती थी, जितना टाइम होता था 8 बजता था तो 8 बार ऐसे कू कू करती थी। तो ये जो असली चिड़िया बाबा के हाथ में होती थी तो कई बार जाती थी और बस उधर इधर तो भोग खा के गई, उधर जाके उसको ऐसे, अब पहचानते नहीं थे तो मतलब वो नकली चिड़िया और उसमें जैसे उसको होता था ये दूसरी चिड़िया कौन आ गई है। तो बाबा हंसी में कहते थे देखो बच्चे कलियुगी दुनिया में तो सब जैसे पशु पक्षी मनुष्य सब आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन हम सतयुगी दुनिया में तो कितना बढ़िया होगा कि सब सतो प्रधान होंगे, सतो प्रधान तत्व है, तो इसीलिए पशु पक्षी मनुष्य भी सब कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से कह के बाबा वो हर परिस्थिति को बदल दिया करते थे। जब बाबा को खांसी आती थी तो कई बार खांसी आके बाबा को ऐसा होता था महसूस कि बाबा की आंख गीली हो गई है, हम लोगों को ऐसा लगता था, लेकिन बाबा थोड़ी देर के बाद कहते थे, यहाँ पास में चित्र रखा होता था लक्ष्मी नारायण का श्री कृष्ण का, तो बाबा कहता देखो बच्चे अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, ये तत्व भी तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है, कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा, विष्णु कृष्ण बनेगा। और बाबा बच्चों को ना कहता था कि बस सब बच्चों को नई दुनिया की याद करके बस बहुत खुश रहना चाहिए, और सतो प्रधान दुनिया में हम जा रहे हैं, खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, ऐसे करके भी बाबा कई बार बताते थे, हर हाल में बच्चों को खुश रहना चाहिए चाहे कैसा भी समय हो, क्योंकि समय तो परिवर्तनशील है, तो समय तो के साथ साथ मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ दुख सुख ये परिस्थितियां विपरीत आएंगी आएंगी परिस्थितियां, लेकिन बच्चों को देखना है। और बाबा प्रत्यक्ष देखने में आता था कि खांसी रूपी परिस्थिति इतनी विकट होती थी, कई बार बाबा को बहुत तकलीफ जैसी महसूस होती थी, हम लोगों को लगता था, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा देखो कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, विष्णु कृष्ण नई दुनिया होगी, नया सतो प्रधान शरीर होगा, तो बहुत खुशी होनी चाहिए बच्चों को, और फिर वो धीरे धीरे खांसी रूपी परिस्थिति गायब हो जाती थी और फिर बाबा स्वस्थिति में स्थित हो जाता था और फिर मुरली चलाने लगते थे। तो ये हमें आज के समय के अनुसार एक ये खजाना, इसमें ये नहीं कि अरे खांसी क्यों आई, कब खत्म होगी, क्या होगा, अपनी स्वस्थिति को हम इतना ऊंचा कर लें कि परिस्थिति कोई भी आए, चाहे परिवार की तरफ से आए, शरीर की तरफ से आए, व्यक्ति वस्तु कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, उसको हम अनुकूल बना सके, हमारी स्वस्थिति इतनी ऊंची हो जाए कि वो परिस्थिति दब जाए। तो एक तो इस खजाने को हमें ये इस परिस्थिति के अनुसार भी यूज करना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए क्योंकि अंतिम पेपर हमारा ये शरीर का ही है और बाबा ने बताया है ये कब होगा, होता जाएगा जब हमारे जो संकल्प हैं, और संकल्प से भी सूक्ष्म चीज क्या है, हमारी वृत्ति। तो जब हमारी वृत्ति जो है, वृत्ति के अंदर जो है कोई भी नेगेटिविटी भी नहीं होगी, और दूसरा जो हरेक के प्रति क्षमा की भावना हो, और क्या चाहिए बाबा ने बताया, जब हम किसी के साथ भी मिलते हैं, देखते हैं, उनके सम्मुख आते हैं, तो बाबा ने कैसा किया था, हम सब ने पढ़ा है बाबा की जीवन कहानी में भी, बाबा ने अनुभव किया था मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, सब परिवार जहां जहां व्यक्ति की बुद्धि जा सकती है, पति पत्नी बच्चे संबंधी व्यवसाय, उन सब की तरफ बुद्धि जाएगी, तो बाबा ने उनको बस ये भी आत्मा है, जो व्यक्ति संबंधित होते थे आत्मा है ये आत्मा, इतना पाठ पक्का कर लिया था। उसका प्रमाण क्या, हम भी कहें, हम भी देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रमाण यही है कि अगर हमें ये पाठ पक्का हो गया कि मैं आत्मा हूं और ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, तो जैसे ही हम उन आत्माओं को दृष्टि देंगे, देखेंगे, वो आत्मा भी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएगी, देह का भान भूल जाएगी। हम लोग जब मिलते थे बाबा से, बाबा यूं आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, आओ बच्चे, बस बाबा हाथ फैला देता था, हम बाबा की बाह में जाते थे, और ब्यूटी ये होती थी कि बस जैसे ही वहां में गए तुरंत ही देह भूल जाती थी, अशरीरी हो जाती। लास्ट के कुछ साल में तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ईसाइयों में दूसरों का इन्फेक्शन लग सकता है बाबा को, तो बाबा स्थूल रीति से शरीर से चाहे नहीं, लेकिन जैसे ही बाबा दृष्टि देते थे तुरंत दूसरा अशरीरी हो जाता था। तो हमें भी ये देखते चलना है, अगर हमने वास्तव में आत्मा का पाठ पक्का किया है, संगम युगी समय को हमने सफल किया है, कहने को तो हम लोगों को भी मुझे ही 50 साल हो गए, इससे ज्यादा हो गए, और भी भाई 10 20 25 हर एक के अलग अलग टाइम हुआ होगा, लेकिन ये पक्का हो जाना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, जिससे भी बात करें उनके नैनों में, उनकी भ्रकुटी में देखें, और बस वो आत्मा भी अशरीरी हो जाए, विदेही हो जाए, और ये इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। और जब ये जितना जितना होता चला जाएगा उतना उतना हमारा ये अभ्यास भी समय का ना ये सफल होता जाएगा, समय में शक्ति हमें मिलती जाएगी। और हमें क्या देखना है, अंत समय हाँ, सारे हमारे सब बीमारियां कमजोरियां और सब हमारे अंत समय में जैसे बाहर निकलेंगी, अरे ये क्या हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने देखा बाबा का भी तो जब ऑपरेशन हुआ और बाबा को भी बीमारी हुई और भाई बहनों को बीमारी होती थी, दादियों को होती, तो उन सब में क्योंकि ये हमारा अंतिम पेपर है, शरीर का पेपर, तो इसीलिए बाबा बोलता है अब अपने हिसाब किताब सारे चुकतू करने हैं, और चुकतू कैसे होंगे हिसाब किताब, उसके लिए बाबा ने दो शक्ति खास बोला है। अभी दो संस्कार होना चाहिए, एक तो रहम दिल का, किसी सबके प्रति रहम की भावना हो। किसी का कोई कड़ा संस्कार देखते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं कोई, तो उसके प्रति घृणा ईर्ष्या द्वेष न हो, बल्कि दातापन की भावना हो, रहम दिल हो और उसके साथ दातापन की, मुझे देना है। अब दातापन माने देने के लिए कोई फिजिकल चीज नहीं कि कोई पैसा कपड़ा या अनाज या कुछ नहीं, बस प्रेम सहयोग, उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना, उन आत्माओं के प्रति ऐसी दृष्टि वृत्ति हो कि वो आत्माएं ये अनुभव करके जाए कि हाँ हम लेकर के जा रहे हैं, भरपूर होकर के जा रहे हैं, इन चीजों के देने में पैसा तो लगता नहीं है। तो इसीलिए आवश्यकता है ये बात की है कि उनके प्रति हमारी स्नेह की और आदर की सत्कार की सहयोग की भावना हो, और जितनी जितनी ये भावना होती जाएगी उतना उतना हम संपूर्णता के निकट चलते जाएंगे। और इसके लिए क्या चाहिए, बाबा ने कहा सदा ये याद रहे कि मैं दाता हूं। कब होगा ये, नहीं तो व्यवहारिक रीति से हम घर गृहस्थी के धंधों में व्यवसाय में इतना फंस जाते हैं ये चीज भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा के पास हर बच्चे का टीवी सेट है, और जब भी कोई परिस्थिति आती है कोई बात होती है किसी भी बच्चे की, उसका वो टीवी सेट ऑन हो जाता है और बाबा को पता चल जाता है कि अभी बच्चा इस परिस्थिति में से पास हो रहा है। हमारा सबका टीवी सेट बाबा के पास है, तो फिर बाबा क्या करता है, बाबा कहता है कि मैं उस बच्चे को विशेष शक्ति देता हूं, उसे बल देता हूं कि वो उस परिस्थिति से पार निकले, उस परिस्थिति के अधीन न हो। और इसके लिए क्या चाहिए, बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि बहुत क्लीन और क्लियर चाहिए। चश्मा भी अगर क्लीन नहीं होगा तो धुंधला दिखाई देगा, नंबर ठीक नहीं होगा तो क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो बाबा कहता है हमारी बुद्धि भी अगर ऐसी हुई तो हमें बाबा तो सिग्नल दे रहा है बच्चे ये करो, क्योंकि बाबा ने कहा है बाबा बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ है। बाबा का वायदा है कि हम साथ साथ जाएंगे और साथ साथ नई सतयुगी सृष्टि में राज्य भी करेंगे ब्रह्मा बाबा के साथ, लेकिन जाएंगे यहां से साथ तब जब परमधाम जैसी जिस स्थिति में हम आए थे उसी स्थिति के अनुरूप पवित्र हो गए शक्तिशाली हो गए वैसे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि वैसा बनने के लिए ये आवश्यक है कि अपने को बीच बीच में ऑडिट करो चेक करो और बुद्धि को देखते रहो कितनी मेरी बुद्धि क्लीन और क्लियर है। ब्रह्मा बाबा भी ये करते थे, देखते थे हम लोग जब संदेशी जाती थी तो कई बार बाबा कहते थे बच्चे देखना ऊपर जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा है और मैं साकार में यहाँ है तो दोनों में क्या फर्क है। तो बहने आके बताते थे कि बाबा बाकी सब शक्ल सूरत सब कुछ वो है, उसमें कुछ तेज ज्यादा है, लाइट ज्यादा है, यानी प्योरिटी की और लाइट। तो बस बाबा यही चाहता है, ऐसे हम सब बच्चों का सूक्ष्म स्वरूप तो वहां है लेकिन हम लोगों को देखना है कि वो लाइट माइट शक्ति वो हमारा श्रृंगार सदा रहे। और बाबा ने बताया मुरली में भी बताया ना, कौन सा सबसे सुंदर श्रृंगार होता है, कौन सा श्रृंगार सबसे सुंदर है, हैं क्या, दिव्य गुण, वो भी ठीक है स्थूल रीति से, स्थूल रीति से जैसे श्रृंगार करते हैं। तो बाबा ने बताया ये हम सब बच्चों को मालूम है कि तीन चीज बाबा ने बताई हैं, ताज, तिलक और तख्त। बाबा ने बताया जो इसमें जो इन पर इन चीजों का श्रृंगार सदा किए रहते हैं। ताज कौन सा? डबल ताजदारी, प्योरिटी का ताज, जिम्मेदारी का ताज जो बाबा ने यहाँ पर हम बच्चों को दिया है। तो वो लाइट का ऑरा उतना उतना वो पवित्र होता जाता है। मुझे याद है जब मैं विदेश में, विश्व में कई जगह जाने का चांस मिला, सब कॉन्टिनेंट्स में, तो जब मैं रशिया गया था तो रशिया में बहनों ने एक को बुलाया था, वो किरलियन फोटोग्राफी वाला। तो एक ऐसी फोटोग्राफी होती है उसमें मनुष्य का चेहरा तो आता ही है, लेकिन साथ साथ वो ऑरा लाइट का भी आता है। उंगली रखेंगे, उंगली का फोटो आएगा, उसके साथ चारों तरफ लाइट, तो आदि आदि। वो ऑरा इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य की थिंकिंग कैसी है, अंदर से वो कितना पवित्र है। तो वो आया, उसने सब टेस्ट किया और करके बताया कि भाई मेरे पास विश्व भर से सब तरफ से लोग आते हैं, सब धर्मों वाले आते हैं सब, लेकिन ब्रह्मा कुमारी वाले जो आते हैं उनका जब भी मैं ये फोटो लेता हूँ, उनका ऑरा होता है, वो ऑरा जितना श्रेष्ठ होता है उतना दुनिया में किसी का नहीं होता। ये साइंटिफिक वो है, और विज्ञान, बाबा ने कहा विज्ञान ही सिद्ध करेगा, क्योंकि विज्ञान की बात को मानते हैं तो दुनिया वाले। तो इसीलिए जितना जितना हम अंदर बाहर साफ होते चले जाएंगे, उतना क्लीन क्लियर बुद्धि जो बाबा कह रहा है ना, तो उतना उतना, क्योंकि अंत में तो दुनिया वाले आएंगे और प्रसिद्धि तब होगी जब दुनिया साइंस प्रूफ करेगी। हाँ, स्वामी नारायण का भी ये देखा, बुद्धि का, जैनी का, सबका, हरेक धर्मों के, लेकिन जितने ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, जितनी प्योरिटी इनके अंदर है मनसा वाचा कर्मणा की, इतनी और किसी में नहीं है, क्योंकि वो प्रूफ उनके पास होगा। तो अभी आवश्यकता यही है कि हमें भी ना ये सफाई तभी होगी जब हमारे अंदर किसी के प्रति नेगेटिव भाव नहीं होगा। तो बाबा ने, और अंतिम समय तक भी हमने देखा, हाँ बाबा ने बताया कि जब ये ऐसी परिस्थिति होगी, ऐसी बात होगी धीरे धीरे, तो अंतिम दिन बाबा से वैसे तो हम कई बार मिले थे, लेकिन बाबा ने आसाम में भेजा था सेवा के लिए, जब हमारी पोस्टिंग हो रही थी तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे वहां जाओ, वहां बाबा के बहुत बच्चे हैं जो बाबा को बड़े प्यार से याद कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई संदेश देने वाला नहीं। तो हमारी पोस्टिंग हुई शिव सागर में, उधर जाके वहां देखा, और बाबा को काम कराना होता है, बाबा ने अपना काम कराया। बाबा ने कई, बाबा कहता है ना, कई बार मैं देखता हूँ कि समझाने वाला उतना अनुभवी नहीं है जितना समझने वाले हैं बड़े, तो बाबा क्या करता है, बाबा उनमें प्रवेश करके उनके द्वारा भी समझा देता है। तो ऐसे कई बार हमें महसूस होता था कि जैसे बाबा खुद समझा रहा है, हम नहीं, हम तो निमित्त, एक जस्ट उस समय बड़ी यंग आयु थी, 21-22 साल के थे, और उस समय वहां पर, और बाबा जब देखता था ये आ रहे हैं, तो उन आत्माओं को, बहुत आत्माओं का ध्यान का पार्ट खोल दिया बाबा ने साक्षात्कार का। छोटी छोटी कन्याएं भी होती थी, कुछ माताएं होती थी, ज्यादातर एकदम छोटी छोटी कन्याएं, वो भी एकदम ध्यान में चले जाते थे, और ध्यान में बाबा तो चारों तरफ फैल गया, अरे यहाँ तो भगवान के दर्शन होते हैं। तो इसीलिए सेवा का कोई भी चांस मिले तो कभी भी वो नहीं करना चाहिए, अरे मैं तो इसके योग्य नहीं लगता, इतना पढ़े लिखे नहीं हूं, ये कैसे होगा, नहीं, बाबा अपने आप कराएगा, बस हाँ कहने की जरूरत है। बाबा कहता जो ना कहे वो नास्तिक, तो ना नहीं कहना है, बस मुझे हाँ बाबा दादियों ने यही, तो दादियों को कोई अनुभव नहीं था, बड़े बड़े घरों की दादियां आई थी बर्तन मांजने का और काम का झाड़ू का, लेकिन हाँ कहा और उसके बाद बाबा ने उनमें ऐसी काबिलियत भर दी सब प्रकार से कि वो भी दिव्य साक्षात्कार मूर्त हो गई और होती जा रही है। तो इसीलिए एक समय, क्योंकि अभी समय जो चल रहा है बहुत सूक्ष्म समय चल रहा है, संगम युग को एक वरदान है और ये वरदान इस समय फलीभूत हो रहा है। कौन सा? एक का अनेक गुना। अगर हम अच्छा पॉजिटिव काम करेंगे, सेवा करेंगे, गुण शक्तियों का अभ्यास करेंगे, एक कदम हमारा बढ़ेगा, उससे 100 गुना शक्ति बाबा ज्यादा हमको देगा। लेकिन इसके विपरीत भी सही है कि अगर हमारा हमारी कर्मेंद्रियों से सोचने में वाचा में कोई निगेटिव आ गया, कोई विकारी बोल आ गया, कर्म हो गया, तो उसका भी हमें 100 गुना निगेटिव यानी किया हुआ खाता हमारा सारा खत्म होता जाएगा। ये भी सावधानी रखने की जरूरत है। इसीलिए समय की बलिहारी यह है कि हमें ये जो वरदान बाबा का ये समय का संगम युग का हुआ है कि एक का अनेक गुना हमें ये मिलेगा। कैसे मिलेगा? आजकल कुछ दिन से बाबा की मुरली चल रही है एकाग्रता के ऊपर। हाँ, तो किस रीति से? क्योंकि अभी जितने दो शक्तियों की बहुत आवश्यकता है, जैसे पेपर्स आएंगे तो वो ऐसी उनका सामना करने के लिए शक्ति चाहिए, तो एक पेपर आएगा, वो आएगा जिसमें हमें परख शक्ति और निर्णय शक्ति स्ट्रांग चाहिए। अगर हमारी परख शक्ति या निर्णय शक्ति स्ट्रांग नहीं हुई तो माया के उस रूप को हम पहचान नहीं पाएंगे। होता क्या है कि माया के कई ऐसे रूप होते हैं, उन्हें तो हम पहचान लेंगे, क्रोध का है, लड़ाई झगड़े का है, ईर्ष्या का है, निगेटिव। लेकिन कई माया के रूप बड़े मोहनी होते हैं, बहुत प्यार के लगेगा, नाम रूप का है कोई भी तो लगेगा कि ये तो बड़ा स्नेही है, सहयोगी है। लेकिन उसमें जब धीरे 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 जब बुद्धि उधर की तरफ एकदम हो जाएगी ना, हम नहीं पहचान पाएंगे तो क्या होगा? एकाग्रता हमारी नहीं रहेगी। योग लगाने बैठेंगे, योग लगेगा नहीं, बुद्धि इधर उधर भाग जाएगी, व्यक्ति की तरह, वस्तु, कोई भी साधनों की तरफ, हर तरफ। तो इसीलिए परखने और निर्णय शक्ति के लिए चाहिए एकाग्रता की शक्ति। बस हम देखें, और एकाग्रता का तो बचपन से अभ्यास है, बचपन में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा, सूर्य की तरफ अगर वो लेंस रख देते हैं एक उसके सामने, तो जो सूर्य की किरणें आती हैं वो नीचे कुछ रखा होता है उसे जला देती है, इतनी गर्मी। वैसे सूर्य अच्छा लगता है लेकिन एकाग्र हो गया तो सब जैसे जल गया। तो ऐसे जब एकाग्रता की शक्ति होगी तो हम माया बुद्धि हमारी उतनी ही क्लीन क्लियर होती जाएगी और माया के असली रूप को हम पहचान सकेंगे तुरंत ही। तो रूप को तो पहचान लिया, फिर क्या करें? तो इसीलिए दूसरी शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति। तो एक शक्ति ये चाहिए परखने निर्णय की, और दूसरी सामना करने की। और सामना करने की शक्ति के लिए क्या आवश्यक है? कि बाबा के साथ हम कंबाइंड रूप में रहें, बाबा के हाथ में हाथ हो, बाबा का साथ हो पूरा। तो क्या होगा कि हम अपनी शक्ति से सामना नहीं कर रहे बल्कि बाबा की शक्ति हमारे साथ है, जो हजारों गुना हमारी शक्ति को बढ़ा देती है। तो इसीलिए वो शक्ति से जब हम सामना कर सकेंगे तुरंत ही सफल हो जाएंगे, तुरंत माया के रूप को पहचान करके। बाबा ने ये भी कहा है, तो ऐसा भी नहीं होगा कि भाई रूप को पहचाना, मैं ये काम करूं या ये करूं, ऐसे करूं या ऐसे करूं, अर्थक्वेक आया है बिल्डिंग में, ऊपर रहूं या नीचे उतरूं या मेज के नीचे छिप जाऊं, नहीं, आपको टच ही वो होगा, आपके कदम ही उधर बढ़ेंगे जहां सफलता होगी, जो एक्यूरेट होगा। बस इस तरीके से कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे और सफलता की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो एक ये आवश्यक है इन अपने जीवन में। अंत समय के लिए अब हमें तैयारी, जैसे एग्जाम आते हैं, बच्चा साल भर पढ़ता है, पढ़े ना पढ़े, कम पढ़े ज्यादा पढ़े, लेकिन एग्जाम जब आता है तो थोड़ा और स्पीड बढ़ानी पड़ती है। अब ये अंतिम समय का बस हमारे एग्जाम का ही समय है, कभी भी परिस्थितियां विपरीत हो सकती है। एकदम ऐसी स्थिति में हमें और क्या करना है, बाबा ने बताया, जैसे बाबा ने करके दिखाया था। हम बाबा से पहले जब मिला करते थे तो पहले मिलते थे तो बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या हाल चाल है, क्या पुरुषार्थ है, बताते थे सब बाबा को। फिर और जब आगे चले 65-66 में, तो उस समय ये होता था, बाबा को एक दो लाइन बताई, बाबा कहता था बच्चे बाबा समझ गया, बाबा अभी तो मैंने बोलना ही शुरू किया है, कि नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया और ऐसा ऐसा करो। लेकिन अंतिम दो दिनों में हमें, जैसा मैं बता रहा था, मैं आसाम में पोस्टेड था और बस बाबा को लिखा कि बाबा मुझे उधर देहरादून जाना है, अगर वहां पर बाबा म्यूजियम बनने वाला है, बहन जी ने बुलाया है तो उधर जाए। तो बाबा को पहले तो पत्र ही होता था, ईमेल और ये सब तो कुछ होते नहीं थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे यहाँ आओ और तुरंत आओ, प्लेन से आओ। तो हम अपने लौकिक पिताजी के साथ यहाँ पहुंच गए 17 जनवरी की सुबह 1969, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का, बाबा को अनुभव करने का पूरा मौका मिला। तो उसमें सबसे बड़ी बात तो क्या देखी, पहले बाबा के पास हम लोग जाते थे, बाबा को सुनाते थे हालचाल, प्रश्न पूछते थे, बाबा उसका उत्तर देते थे। लेकिन उन दो दिनों में हमने देखा कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे कि बाबा से ये पूछेंगे, बाबा ने जरा सा यूं दृष्टि दी और दृष्टि दे के बाबा कहते थे बच्चे ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, मतलब एक अक्षर भी हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो अब समय बाबा तो बन गया और बस बाबा ने ये बताया और हमने लोगों ने बाद में दादियों से भी पूछा। तो ये स्थिति तब बनती है जब मन जीते जगत जीत, अपना मन जीत लिया, अपने व्यर्थ संकल्पों को जीत लिया तो जगत जीत, दूसरे किसी के भी मन के भावों को हम पढ़ सकेंगे और केवल पढ़ ही नहीं सकेंगे, उसका समाधान भी कर सकेंगे। और तभी ये आवाज निकलेगा हमारे सामने, जैसे हम लोग बाबा के सामने जाते थे, बाबा पढ़ के हमारे दिल का हाल बता देते थे। ऐसा 5-6 बार हुआ दो दिन में, 17-18 जनवरी को 1969 में। तो अंत में ये ही, दुनिया वाले जब हम भी केस के सामने आएंगे और हम लोगों ने भी ऐसी मन जीते जगत जीत, इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति को प्राप्त कर लिया होगा, तो जैसे ही वो आत्माएं सम्मुख आएंगी, हमारी दृष्टि उन पर पड़ेगी, उनके मन का भाव हम जान लेंगे, क्योंकि तब तक हम बिल्कुल व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति पा चुके होंगे। और ऐसी स्थिति में उनके मन का हाल जान करके और फिर उन्हें बता देंगे कि ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। और तब ही निकलेगा यही बात, या अगर हमारे मुंह से बात नहीं निकलेगी, हम लोगों के द्वारा उनको अपने इष्ट देव का साक्षात्कार होगा, जो जो जिसका इष्ट देव होगा, कोई गणेश का होगा, कोई हनुमान का भक्त होगा, कोई राम का होगा, कृष्ण का, तो बस जैसा साक्षात्कार होगा और तब उन्हें लगेगा कि अरे भगवान का साक्षात्कार हुआ और तब ये बात निकलेगी, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, भगवान यहां पर है, यहीं पर ही हमें मिल रहा है। तो हमने ये देखा 18 जनवरी की। अब बात मैं अंत में बताना चाहता हूं कि 18 जनवरी को बाबा ने ना बस रहे हुए पेंडिंग काम दो तीन जो पूरे किए। तो पहली बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए, हमें सब तरफ से वाइंड अप करते चलना है, समेटते हुए चलना है। क्यों? जितना फैलाव होगा, भले चाहे ईश्वरीय सेवा का हो कुछ हो, हमारी बुद्धि उधर ही जाके अटकेगी और अंतमति सो गति तब तो नहीं हो पाएगी। इसीलिए अंतमति सो गति कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए जरूरी है हमने समेटा हुआ हो, अंत में हमारी इच्छा के विपरीत हमें कोई भी याद ना आए। तो बाबा का भी ये देखा हमने, और बाबा ने बस 18 जनवरी को का 25 जितने पत्र लिखवाने हो लिखवा दो ईशु दादी से, सारे पत्र लिखे बाबा ने। बाबा ने नक्की लेक का एक जो म्यूजियम है वो बिल्डिंग लेने का कई दिनों से चल रहा था, उसी दिन बाबा ने क्लियर किया। और रोज रात्रि को बाबा क्लास कराता था 9 बजे, लेकिन उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा 7 बजे ही क्लास कराएगा, सब लोग भोजन करके आए। तो इसीलिए ये हमारी भी अंत समय ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि अगर बाय चांस दो चार कोई काम पेंडिंग रह गए हैं, उन्हें लास्ट दो एक दिन में पूरा कर ले। वैसे तो रहने नहीं चाहिए, अगर विल बनानी है विल बना ले, घर गृहस्थी में कोई भी काम पेंडिंग है, कोई बिजनेस के काम है, सब करके हम धीरे 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 बिल्कुल हल्के होते जाए, कहीं से बंधे ना रहे, वो अंत में वो खींचे नहीं। उसके बाद फिर क्या होगा, बाबा ने उस दिन क्लास कराई जल्दी, सबको भोजन करके आने का निर्देश दिया था, और उस दिन बाबा को एक बार भी ना कोई खांसी आई ना कफ आया, जो इस बात का सूचक है कि भाई कर्म भोग के ऊपर बाबा के योग बल ने संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली। ये बताने का भाव यह है कि ये पेपर हम सबके सामने आएगा, लास्ट पेपर, क्योंकि जब आत्मा शरीर से निकलेगी और जब अंतिम समय होगा, अगर हमारी ऐसी स्थिति नहीं हुई तो पुनर्जन्म जाके कहीं और ले लेना पड़ेगा बचा हुआ हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। तो इसीलिए आवश्यकता अब ये है सुनाने का भाव। और उसके बाद बाबा ये कह के फिर अपने कमरे में गए, और एक बार भी बाबा को वो नहीं आया, और अंत में बाबा ने कहा अच्छा बाबा छुट्टी लेता है, विदा लेता है। छुट्टी और विदा लेके बाबा कमरे में गए, और फिर बाबा ने किस तरीके से शरीर छोड़ा वो तो सब लिखा ही हुआ है, उसके संदर्भ में मैं ज्यादा नहीं जाता। लेकिन हमारा भी ऐसा ही हो, हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। ब्यूटी तो तभी है, मरना तो सभी को है, दुनिया में जाना है, लेकिन भीष्म पितामह की तरह, भीष्म पितामह ब्रह्मा बाबा का ही तो उदाहरण है, तो भीष्म पितामह की तरह हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, वो बाबा का देखा। और उसके लिए क्या आवश्यक है कि ये जो 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है ना, इस शरीर के भी हम अपनी इच्छा से छोड़े, और वो तभी होगा चाहे जितना भी अर्थक्वेक आएगा फ्लड आएगा, क्योंकि भारतवासियों की मृत्यु तो मुख्य रीति से इसके द्वारा ही होनी है। तो इस कारण से ये अर्थक्वेक और इनके द्वारा भारतवासियों को शरीर छोड़ना है, तो इन तत्वों के अनुरूप हम अपने को बनाते चले, तत्वों को मित्र बना लें, तत्व ही हमें हिंट दें कि हाँ अब ये होने वाला है, अब अर्थक्वेक होने वाला है, अब सुनामी आने वाली है, अब साइक्लोन आने वाला है। और जैसे ही वो हिंट देंगे हमारे पैर, अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हुई तो हमारे पैर उधर ही बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, बाबा ने ये बताया हुआ है। तो अभी आवश्यकता है, इस डिटेल में तो नहीं जाता मैं, समय हो गया है, लेकिन अब हम लोगों को ऐसा करना है कि रोज प्रकृति के तत्वों को कम से कम 5-7 मिनट रोज एक एक तत्व को एमर्ज करके, जल तत्व, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनको एमर्ज करके दान देना है वो, और इन तत्वों को बस ऐसा। और बाबा ने एक मुरली में इसकी सहज विधि भी बताई है। एक उसके बता देता हूं कि जब हम लोग थे अभियान में, तो उस दिन बाबा ने जल की विधि बताई थी। जल को कैसा, जल के साथ कहो कि हे जल देवता, आप भी देवता हो, हम भी होवनहार देवता हैं, आओ हम और आप हैंडशेक करें, मिल करके इस सृष्टि को पावन बनाएं, और ये हम आपका सहयोग चाहते हैं। अगर आप तक हमारे वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं तो आओ हम मिल करके, शेक हैंड करके आओ, आप हमारे चरण छू के जाओ। हम लोग ये सुबह अमृत वेले 4 बजे समुद्र के किनारे जाकर हम लोगों ने योग किया, साउथ इंडिया में कनानूर जगह थी। अब वहां पर बिल्कुल शांत समुद्र था, और बाबा ने उसी दिन कहा था और उसी दिन ही किया, तो पता नहीं कहां से एक लहर आई और अंत समय में वो चरण स्पर्श करके चली गई। कहने का भाव ये है कि हमारी वार्तालाप तत्वों तक पहुंचती है, हम करके तो देखें। तो बस बाबा का यही देखा, बाबा ने कैसे पूरा का पूरा ये अंत में शरीर छोड़ा, और अभी बाबा भी सूक्ष्म वतन में हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें भी उसके लायक बन करके बाबा के साथ जाना है। ओम शांति, ओम शांति।